तो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण ने कैसे मारा वृत्रासुर और बकासुर को। तो बच्चों, एक बार कृष्ण और बलराम भगवान यमुना के किनारे खेल रहे थे। तो वहाँ पर कंस ने एक राक्षस को भेजा। राक्षस का नाम था वत्सासुर। उससे कहा, जाओ कृष्ण और बलराम को मार डालो। वो बहुत ताकतवर राक्षस था। वो वहाँ आया और उसने देखा कि कृष्ण और बलराम वहाँ पे बछड़े चरा रहे हैं। और उसने देखा कि अब मैं इसको कैसे मारूं कैसे मारूं। उसने सोचा कि अगर मैं एक बछड़े का रूप धर लूँगा तो मैं इनके बीच में घुस जाऊँगा और ये मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। फिर जब मौका मिलेगा तो मैं दोनों को पकड़ के मार डालूंगा। इस तरह से वो छुप छुप के बच्चों बछड़ा बन गया। और बछड़ा बन के उसने सोचा कि अब मैं इसमें घुस जाता हूँ। वो उसमें घुस भी गया। उसके बाद वो इनको मारने चाहता था। और उसके बाद पर कृष्ण बलराम ने उसको पहचान लिया कि एक असुर आ गया है अंदर। तो दोनों ने सोचा हम चुपचाप रहेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने वह चुपचाप उनको भगाते रहे। और उसके बाद सोचे कि अब इसको मारना चाहिए। तो कृष्ण ने पता है क्या किया? कृष्ण ने उसके दोनों टांगों को पकड़ लिया और पूंछ को भी पकड़ लिया और उसको बहुत जोर से घुमाया। बहुत जोर से घुमाते घुमाते पंखे की तरह उसको पेड़ के ऊपर फेंक दिया। इतनी जोर से घुमाने से उसकी जान निकल गई बच्चों। उसकी आंखें बाहर से आ गई और वो नीचे पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। जब उसको देखा नीचे जाके बच्चों ने, तो देखा है तो मर गया है हाथ लगा के इधर आंख वाँख से। फिर बोले, हुर्रे हुर्रे, बहुत बढ़िया कृष्णा, क्या मजा किया तुमने, मजा आ गया हमें, इसको क्या घुमाया तुमने, घुमाते ही मार डाला, वाह 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 वाह। देवताओं ने भी देखा कि ये ऐसा असुर था जिससे हम डरते थे, इसको मार दिया कृष्ण ने। तो उन्होंने भी ऊपर से बहुत सारे फूल बरसाए। इस तरह से बच्चों, कृष्ण और बलराम जो कि इस दुनिया को बनाने वाले थे, वो अपने बछड़ों की देखभाल करते थे हर दिन। और सुबह से लेके शाम तक बछड़ों को चरा के अपने बचपन का मजा लेते थे। एक बार ये जो गोप बालक थे, ये यमुना किनारे गए अपनी गैया जो के जो बछड़े थे उनको पानी पिलाने। उसी नदी से बछड़े भी पानी पी रहे थे और कृष्ण भगवान के दोस्त लोग भी पानी पी रहे थे। जब उन्होंने पानी पिया तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जानवर जो कि एक बहुत बड़े चिड़िया की जैसे दिख रहा था। वो आपने देखे ना, तो रशिया से इंडिया आते हैं बड़े बड़े पैरों वाले जो व्हाइट कलर के चिड़ियाएं होती हैं जिनकी बहुत लंबी लंबी बीक्स होती है, वैसा दिख रहा था। ओ, पर वो बहुत बड़ा था, पहाड़ के जितना बड़ा था। और उसका जो बीक था, मतलब जो उसकी चोंच थी, वो तो बिल्कुल ठंडर, मतलब जो बिजली कड़कती है ना, वैसी की वैसी टाइट और कड़क कड़क थी। उसको देख के बच्चों सब डर गए जो उन्होंने देखा उसको। उसका नाम था बकासुर। वो भी कृष्ण का दोस्त था और वो एकदम से अपीयर हो गया था वहाँ पे। किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से आया है। और जैसे उसको देखा उन्होंने, तुरंत उसने क्या किया, उसने कृष्ण को चोंच मारी और चोंच मार के खा गया कृष्ण को। बच्चों, किसी को पता ही नहीं पड़ा। दोस्तों ने सोचा, ओह कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण यहीं तो था, अरे ये खा गया जानवर हमके कृष्ण को, हो कृष्णा कृष्णा। बलराम एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उन बच्चों ने एक दूसरे को गले लगा ली, मतलब टाइट टाइट पकड़ लिया एकदम। सोच रहे थे कृष्ण कहाँ गया, कृष्णा कृष्णा, ऐसा चिल्ला रहे थे। उसके बाद वो उसको खाने लगा ना। जब उसको अंगलने लगा कृष्ण को, वो बकासुर, तो कृष्ण अंदर नहीं गए, वो वहीं गले में अटक गए।
और गले में बच्चों उन्होंने उनकी बहुत तेज रेडियंस होता है, आपने देखा है ना, भगवान के चारों तरफ उजाला निकलता रहता है, तो भगवान ने अपने यहाँ से बहुत सारा अपना रूप प्रकट करा, उससे बहुत सारा उजाला हुआ, उस उजाले से बहुत सारी गर्मी लगी उसको, और उसको लगा कि जले गर रहा है उनका, उसका गला जल रहा है, तो उसने क्या करा, उसने उनको उठा के बाहर फेंक दिया कृष्ण को। फिर उसने सोचा कि इसको मैं अब खत्म कर डालूंगा। अब कृष्ण तो ब्रह्मा जी जिसने जिन्होंने दुनिया बनाई है उनके भी पिताजी हैं, और वो कृष्ण को कौन समझे कि ये बालक के रूप के अंदर इतनी बड़ी वो अपनी लीलाएं कर सकते हैं। अब उसने सोचा है, छोटा सा बालक कृष्ण ये मेरे को जला रहा है, इसको तो मैं अभी खत्म कर डालता हूँ उसको। उसने चोंच मारने की कोशिश करी, पर बच्चों पहले कृष्ण ने उसको सोचा, बच इधर उधर बच्चे थोड़ा इधर किया थोड़ा उसके साथ ऐसे प्ले किया, फिर वहीं पे उसको जाके उसको जैसे चोंच मारी उसको पकड़ लिया चोंच से ही, और उसके दो चोंचों को ऊपर करते हुए उसके अंदर घुसने लगे, और फिर ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई पत्ती को फाड़ दिया हो। तो उन्होंने एक चोंच को नीचे कर दिया और दूसरी चोंच को उसके मुंह से निकाल के ऊपर तोड़ दिया, उसका मुंह पूरा का खत्म टूट गया और वो मर गया वहीं के वहीं। सोचो कितना ताकत मारा, कितना गलत, कितना गंदा तरीके से मारना पड़ा उसे, क्योंकि असुर था, बहुत गंदा पक्षी था, बच्चों को मारता था और अच्छे अच्छे लोगों को मारता था, बहुत पापी पक्षी था। तो कृष्ण ने उसको उसी पाप की दंड उसी तरह से दिया। इस तरह से बच्चों जब उन्होंने किया तो बच्चे वापस बहुत खुश हुए, फिर गले आके लग गए। उसके बाद वो जो पूरी दुनिया को बनाने वाले जो हैं कृष्ण भगवान, उनके ऊपर देवताओं ने भी खूब सारे फ्लावर्स, सुंदर सुंदर और खुशबू वाले फ्लावर्स ऊपर लगाए, उनके ऊपर चढ़ाए। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ढोल नगाड़े और फुफाड़ियाँ जो होती लंबी लंबी वो, और शंख, ये सब बजने लगे। उसके बाद जब ऐसा देखा उन्होंने कि कृष्ण ने उनको मार दिया, तो फिर वो वापस अपने घर गए। जब उन्होंने घर गए तो उन्होंने नंद बाबा को बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा। उसको सुन के वहाँ के लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह की लीलाएं कृष्ण आराम से कर सकते हैं। वो तो सोचते थे कृष्ण एक बालक है, और जब उन्होंने देखा कि ये मृत्यु से बच गए हैं तो वो उनको बहुत प्यार करते थे, और उनको बहुत दुख भी होता था, डर भी लगता था कि हमारे बालक को कोई पकड़ के नहीं चले जाए वापस असुर। और फिर गोपीज आपस में बैठ के, जैसे आपने देखा ही होगा, गोपीज आपस में बैठ के बतियाने लगती, अरे कृष्णा लाला तो बड़ा अच्छा है, कृष्णा लाला ने कल एक पक्षी को मार दिया, बड़ो बड़ो पक्षी आए छो, इस तरह से बोलते थे। उसके बाद कृष्ण को पर बोले कि फिर उसको कुछ भी नहीं इंजरी हुई, कहीं चोट नहीं हुई, इस तरह से वो बतियाते रहते थे और कहते थे भगवान हरि ने बचा लिया है, हमारे कोई बड़े पुण्य होंगे जो हमारे बालक को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर उनको गर्ग मुनि की बात याद आ गई, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी से पहले ही बता दिया था कि इसको बहुत सारे डेमन्स हिट करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। अब उनका शब्दशः चीज वैसी की वैसी ही हो रही थी। इस तरह बच्चों वो कृष्ण की बातें करते रहते थे और अपनी सारी दुख 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 और जो परेशानियां था परेशानियां होती थी उनको भूल जाते थे। इसे बोलते थे कृष्ण की भक्ति, और इस तरह से वो कृष्ण के साथ उनके बचपन को भी इंजॉय करते थे और कृष्ण का गुणगान करते रहते थे। आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।
अब हम द्वारका महात्म्य पढ़ेंगे। द्वारका महात्म्य, श्री द्वारका पुरी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री राधिका जी की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। अब प्रभास खंड के अंतर्गत द्वारका महात्म्य की कुछ सार बातें लिखी जाती है। एक बार कुछ तपस्वी महात्मा गण दैत्यराज बलि और प्रहलाद जी के पास गए। उन्होंने उनका यथावत पूजन किया, तत्पश्चात कहा, महात्माओं मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है, झूठ ने सत्य को तथा शूद्रों ने ब्राह्मणों को परास्त किया है, राजा का रूप धारण करके आए हुए म्लेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का हास हो गया है, वेदों का मार्ग लुप्त होता जा रहा है, ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ हैं? जहाँ ज्ञान ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, जहाँ ज्ञान ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गूढ़ स्थान का पता हमें बताइए। श्री प्रहलाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु की प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुशस्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र से मिली है, वही द्वारवतीपुरी कहलाती है। उसे आनर्ता भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम है, वही परम पद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान हैं। वहाँ जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहाँ गोमती नदी बहती है, वहाँ जहाँ भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाला, ध्यान से सुनिए, चक्र तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। चक्र तीर्थ नाम की एक जगह है वहाँ पे द्वारकापुरी में, वहाँ स्नान करना है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। तो जो मूर्ति है वहाँ पे, वो ऐसे ही नहीं किसी ने बना दी है, वहाँ पे भगवान स्वयं उसमें स्थित हुए हैं, ऐसा लिखा है स्कंद पुराण में। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। मनुष्य द्वार का जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। सिर्फ जाने का विचार मन में लाती, भगवान मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे पर चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्ण पुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वह निसंदेह विष्णु धाम में जाता है। अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुरी के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सुहृदय गोपों तथा गोपीजनों का प्रिय करने के लिए उद्धव को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोकुल को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्र अलंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल के समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सला माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपनी साथी ग्वाल बालों को कभी याद करते हैं? क्या मथुरा नाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा काला कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्हें अति व्याकुल देखकर उद्धव जी ने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलाया है, कुशल मंगल पूछा है और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। श्री कृष्ण किसी वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त व्रज सुंदरियाँ परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गईं और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगी। तुम कहाँ से और किस लिए आए हो? इतना कहते कहते वे शोक से विहल एवं मूर्छित हो गई और उद्धव जी की ओर देखते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम परवश गोपी जनों की अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रवण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की भी यही दशा है कि दिन रात तुम्हारी ही याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की यह बात सुनकर विभिन्न गोपांगनाओं ने प्रणय कोप से विरह भरी बहुत सी बातें कही और फिर ये व्रज युवतियाँ विलाप करने लगीं। ये श्री कृष्ण की एक एक लीला को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे। अहो, ब्रह्मा, महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। व्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य है। इन सबका जन्म, जीवन तथा यौवन धन सफल हो गया क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। गोपियां बोली, उद्धव जी, आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमको भी ले चलें। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विह्वल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहने वाली समस्त व्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चलीं। वे मार्ग में उनकी बाल लीला के प्रिय गीत गाती जा रही थी। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गई। उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वे मद सरोवर के तट पर आईं। यहाँ उद्धव जी ने कोई मद सरोवर नाम की कोई जगह है वहाँ पे, उस द्वारका में, वहाँ की बता रहे हैं। वहाँ उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहीं ठहरो, महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम लोगों का हित करेंगे। गोपियाँ बोली, अच्छा उद्धव जी, आप शीघ्र आइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए, वे ही हमारी नयनों में आनंद की सृष्टि करते हैं, उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है, अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा देवकी नंदन आ रहे हैं, उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है, मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है, कानों में मकराकर कुंडल चमचम कर रहे हैं, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दीर्घ काल के बाद देखकर श्री कृष्ण प्रिया गोपियां प्रेमावेश से मूर्छित हो गईं। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुई तब इस प्रकार विलाप करने लगी, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हा स्वामिन, हा व्रजेश्वर, हा मनमोहन, बचपन में जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया उनको भी तुमने त्याग दिया, बताओ तो सही हम पर इतने रुष्ट कैसे हो गए। गोपियों का यह विलाप सुनकर सबके आंतरिक भावों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सब गोपियां अनन्य भाव से मेरी शरण में आई हैं। अतः व्रजेश्वर ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा, देवियों, तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं है, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूँ, ऐसा जानकर तुम मन में शोक न करो, सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो, इससे सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाओगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए, उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गए, वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गईं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया। वे इस प्रकार बोली, गोविंद, आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए क्योंकि आज दीर्घकाल के बाद हमारी आंखें गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्रियों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता।
प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी अपनी प्रभा से बाहर के गाढ़ अंधकार का नाश कर देती है और भक्तों को भयनाशक परमानंदमयी पद प्रदान करती है। तदनंतर पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियों ने द्वारकापुरी में जाकर दूर से ही चक्र विभूषित श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करके छाता और खड़ाऊं त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया। वे दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गए। उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और वे बार बार धरती पर लौटने लगे, कोई जय जयकार और कोई नमस्कार के साथ ही गर्जना करने लगे। दूसरे लोग परमानंद में मग्न होकर स्तुति सुनाने लगे। सभी महर्षि तथा वहाँ प्रकट हुए सभी तीर्थ आनंद की आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। उन सबको देखकर नारद जी ने कहा, तुमने सहस्त्रों जन्मों में सहस्त्रों पुण्य पुंजों की राशि संचित कर रखी थी, जिससे आज तुम्हें श्री कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन द्वारका जाने की बुद्धि और महादेव जी में दृढ़ भक्ति, यह सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं है। वे पूर्वज धन्य हैं जिनके वंशज श्री कृष्ण की दर्शन के लिए उत्सव पूर्वक द्वारका की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने इष्ट श्री हरि का दर्शन पाते हैं। सब मुनि लोग देखें, यह द्वारका पूरी तीनों लोकों में सुशोभित होती है। श्री कृष्ण प्रिया द्वारका इस पृथ्वी की कीर्ति है, जहाँ गोमती रुक्मणी देवी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं, वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेज से सुशोभित है। ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणारविंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं, वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली है। द्वारका के प्रभाव से कीट पतंग पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करता है मतलब जो वहाँ रहने वालों की जो निंदा करता है, वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। इसलिए कभी भी द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, ब्रज में इनमें रहने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती होने के बाद भी कोई बुराई ना करें, नहीं तो यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्तिपूर्वक निवास करते हैं, वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है, वहाँ की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर विचार किया गया। स्कंद पुराण में ऐसे महत्व के स्थल बहुत हैं, पाठकों को उन्हें वहीं पढ़ सुनकर तो जीवन में धारण करके लाभ उठाना चाहिए। ये आखिरी था स्कंद पुराण के आखिरी लाइनें हैं, ये आखिरी में सबसे दिया गया है ये द्वारका महात्म्य, और ये हमने आपको अभी बताया। प्रभास क्षेत्र की महिमा, ये भी हम स्कंद पुराण से बोल रहे हैं। तो प्रभास क्षेत्र की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे। अब प्रभास खंड का सार दिखला जाता है। इसमें प्रभास क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, उन सब में श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। जो क्रोध लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दम्भ और मात्स्य से रहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करना चाहते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। देवी,
देवी समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्यनारायण जी हैं। पूर्व भाग में सूर्यनारायण जी हैं, पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों को नाश करने वाला है। देवी जो निर्मय निर्भय निर्मल नित्य निरपेक्ष निराश्रय निरंजन देवी जो निर्भय निर्मल नित्य निपेक्ष निराश्रय निरंजन निष्प्रपंच निसंग निरुपद्रव तत्व है, जो मोक्षदाय अज्ञेय अनुपम अनामय नित्य कारण रूप दिव्य निर्लेप विश्वतोमुख शिव सर्वात्मक सूक्ष्म अनादि देवत रूप आत्मस्वरूप से जानने योग्य चित्त के चिंतन से परे गमनागमन से युक्त मुक्त गमनागमन से मुक्त बाहर भीतर व्याप्त केवल अद्वितीय मतलब निष 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 निर निष निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है। वही प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह जानो। मैं जितना भी ये कुछ बताया है, भगवान बता रहे, शिवजी बता रहे हैं कि जितना भी ये बताया गुण, ये सब प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह जान लो। क्लियरली शास्त्रकंद पुराण में लिखा है। इस प्रकार सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर सोमनाथ की महिमा, सोमनाथ मंदिर का निर्माण, सोमनाथ की यात्रा विधि और दर्शन पूजन की महिमा एवं वहाँ के तीर्थों का विस्तृत वर्णन किया गया है।